हरे कृष्णा। तो आप सभी का प्रातः श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे आज प्रवक्ता हैं श्रीमान धर्मराज प्रभु जी। श्रीमान धर्मराज प्रभु जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। प्रभु जी महाराष्ट्र में अरावाड़े एक जगह है, वहां से है। यह अरावाड़े आप में से किसी ने सुना है इस जगह के बारे में? आपने सुना है। उस जगह की खास बात क्या है जी? वो परम पूजनीय श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज जी का जन्म स्थान है, उनका गांव। अभी वहां पे बहुत ही भव्य सुंदर राधा गोपाल जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है और प्रायः पूरा गांव अभी भक्त बन चुका है। तो प्रभु जी उसी आरावाड़े जगह से हैं और परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य है। काफी ये करीब कृष्ण भावनामृत में लगभग 23 सालों से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे, अभी पिछले 2 वर्षों से इस्कॉन नोएडा में है और प्रभु जी अभी इस्कॉन नोएडा के मंदिर अध्यक्ष भी है। तो प्रभु जी का एक बार जोरदार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रवृजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनिरोस्तम सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8वां और अध्याय 5वां, अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना और श्लोक संख्या 47। क्लेश भूर्यल्पसाराणी कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। क्लेश कठिनाई, भूरि अत्यधिक, अल्प बहुत कम, साराणि अच्छा फल, कर्माणि कार्यकलाप, विफलानी निराशा वा अथवा देहिनाम मनुष्यों का, विषय आर्तानाम भौतिक जगत का भोग करने की इच्छुक, न नहीं तथा उसी तरह एव निसंदेह अर्पितम अर्पित द्वई आपको। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के इच्छुक रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बाद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। तात्पर्य, हम यह व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं कि जिन भक्तों ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपना जीवन कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है वे किस तरह बिना कठिन श्रम किए भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन केवल 40 रुपए से चालू हुआ था, किंतु इस समय उसके पास 40 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है जो 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त की गई है। कोई भी कर्मी इतनी तेजी से अपने व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं रख सकता। साथ ही कर्मी जो कुछ प्राप्त करता है वह नाशवान है और कभी कभी निराशाजनक भी, किंतु कृष्ण भावना में सब कुछ प्रेरणाप्रद एवं प्रगति लाने वाला है। कृष्ण भावना आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यह आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने तथा मादक द्रव्य सेवन से दूर रहने की संस्कृति करता है। ये ऐसे प्रतिबंध है जिन्हें कर्मी बहुत नापसंद करते हैं, फिर भी इतने सारे शत्रुओं के होते भी ये आंदोलन बिना किसी अवरोध के प्रगति करता जा रहा है। यदि भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों पर अपने जीवन को समर्पित करके इस आंदोलन का प्रसार करते रहें तो इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा, यह बिना किसी सीमा के आगे बढ़ेगा, बढ़ सकेगा। हरे कृष्ण का जप करो। हुम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरुः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कौर्द्विषे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित वैष्णव की कृपा की याचना करता हूं जिसके द्वारा श्लोक पर मैं कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो कल जो श्रीमान प्रभु जी ने लिया रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने उस श्लोक में अवतारों का आश्चर्यजनक रूप में प्रकट होना इसके बारे में वर्णन था और आज एकदम जंप करके कर्मियों की बात हो रही है आज सभी भक्तों के बीच में। वैसे देखा जाए तो इस श्लोक में कर्मियों का महात्म्य नहीं बताया जा रहा है, इस श्लोक में कर्मियों से भक्त कितने श्रेष्ठ होते इसका वर्णन यहां पे दिया जा रहा है। क्योंकि यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा रहा है कि कर्मियों की निंदा की जा रही है अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं। यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए वर्णन हो रहा है कि देहिनाम विषयार्थानाम जो विषय बार जो विषयार्थानाम मतलब जो भौतिक जगत का भोग करने की जो इच्छुक है या एक शब्द में जिन्हें क्या कहा जा सकता है कर्मी। कर्मी मतलब जो केवल कर्म करने में रुचि रखते हैं, कर्म करके उसके फल का भोग करने में जिनको ज्यादा दिलचस्पी है उन्हें कहा जाता है कर्मी। और यह बताया जा रहा है कि देहिनाम विषयार्थानाम मतलब जो मनुष्य देहिनाम मतलब जो मनुष्य है जिन्होंने देह धारण किया है ऐसे मनुष्य क्या करते हैं हर समय विषय से ज्यादा उनका झुका होता है क्या करने में विषयार्थानाम जो केवल इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं। और क्या करते हैं वो लोग क्लेश पूर्यल्प मतलब क्लेश पूरी मतलब अतिरिक्त बहुत कठिन कठोर परिश्रम करते हैं कर्मी लोग। कर्मी लोगों की विशेषता है कि वो परिश्रम करते लेकिन केवल थोड़ा नहीं ज्यादा ही करते हैं। यहां लिखा है भूरी अतिथि बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं और मिलता क्या उनको अल्पसाराणी बहुत सार थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ज्यादा नहीं मिलता है। मतलब जितना परिश्रम है उतना फल नहीं मिलता है, परिश्रम बहुत है लेकिन फल इतना ही। उनकी अपेक्षा होती है कि इतना परिश्रम के बाद फल भी उतना मिले लेकिन परिश्रम इतना और फल इतना, मतलब क्लेश पूर्यल्प साराणी। और कभी कभी क्या होता है, कर्माणी विफलानी वा, कभी कभी इतना कर्म करने के बाद कभी कभी थोड़ा फल मिलता है और कभी कभी उतना भी नहीं। तो इतना परिश्रम करने के बावजूद भी व्यक्ति क्या सोचता है परिश्रम करते समय, मैं ये करूंगा वो करूंगा मुझे वो मिलेगा वो मिलेगा, लगता है ऐसे, लेकिन क्या होता है कि निराशा। यह बताते कि विफला नहीं मतलब निराशा, इतना कर्म करने के बावजूद भी हम सोच सकते हैं ना, इतना कर्म करने के बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है, इतना सा मिल रहा है या वो भी नहीं मिल रहा है, तो निराशा तो होगी, डिप्रेशन तो होगा ही, लगे इतना किया हाँ इंप्रेशन भी नहीं, डिप्रेशन हो गया, उल्टा ही हो गया कुछ, जो सोचा था और सोचा था क्या और हो क्या गया, ऐसा होता नहीं। भौतिक जगत का ऐसे नियम है, कर्मी लोगों के साथ ऐसे होता है, इतना हो रहे फिर भी वो सुधरेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे हाँ, वो केवल भोग करने के लिए कर्म करते रहेंगे, सुख की अपेक्षा करेंगे, लेकिन मिलेगा क्या, थोड़ा सा कुछ या वो भी नहीं। लेकिन वही जो उसके विपरीत बताया है, कर्मियों के लिए इतना सा बताया है, आप जानते हो ना कौन स्तुति कर रहे हैं, एक इनके वचन है ब्रह्मा जी के, ऐसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मा जी के वचन है, ब्रह्मा जी हालांकि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान तो अभी प्रकट नहीं हुए, क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान की स्तुति करते करते बीच में क्या कर रहे हैं, वो अभी भक्तों की स्तुति कर रहे हैं, कि मतलब ऐसे भगवान के भक्ति के कैसे होते हैं, और देखिए कर्मी कैसे, मतलब भक्तों की श्रेष्ठता बताने के लिए कर्मियों का भी थोड़ा हिंट देकर बता रही, कर्मी ऐसे होते हैं लेकिन भक्त देखिए कैसे होते, मतलब इसकी विपरीत क्या बता रहे हैं, न तथे वार्पितंतो, इतने दो तीन शब्दों में भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इतने दो तीन शब्द होते भी बहुत भारी शब्द है, ऐसे गुरु शब्द का अर्थ क्या है, बहुत भारी, मतलब केवल वजन में भारी नहीं ज्ञान में भारी, भगवान के प्रति जो समर्पण की भावना है उसमें भारी है गुरु या भक्त होते हैं। तो यहां बताया जा रहा है न तथे वार्पितम, तो न मतलब नहीं, कौन नहीं, जो भक्त होते हैं, भक्त ऐसा नहीं करते, क्या नहीं करते कि बहुत दिन रात बस मेहनत कर रहे और फल थोड़ा ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहे बस, ऐसे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि तथे वार्पितम तो ही, हे भगवान आपके भक्त आपको समर्पित होते हैं इसलिए उन्हें थोड़ा सा कुछ करने के बाद बहुत कुछ मिल जाता है, 40 रुपए से क्या मिल जाता है, 40 करोड़ मिल जाता है, इसका मतलब नहीं कि भक्त तो बिजनेस कर रहे और 40 रुपए से ऐसे करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहां बिजनेस की बात नहीं हो रही है, ये पंचायत भाग है तो यहां पे बिजनेस की बातें हो सकती बाहर, लेकिन भक्तों के बीच में भगवान के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, और जैसे भगवान भी गीता में बताते हैं ना दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, कौन सा श्लोक है वो, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कहते कि मेरी भक्ति में थोड़ी भी किसी ने थोड़ा सा प्रयास भी करने से क्या होता है, थोड़े प्रयास से इतना बड़ा लाभ होता है, क्या बड़ा लाभ क्या होता है उसे, त्रायते महतो भया, बहुत बड़े भय से रक्षा होती है, बहुत बड़ा भय क्या है मनुष्य के लिए, मृत्यु भय, और एक भय कौन सा, पशु योनि में जाना, और कोई पशु योनि किसी को मिलती है क्या हम उसको मंदिर में बुलाएंगे, पशु को किसी चूहे को इनविटेशन मिलता है, नहीं मिलता है, संडे प्रोग्राम है हाँ सभी कुत्तों को इनविटेशन नहीं मिलता, नहीं कि केवल मनुष्यों के लिए है, यहां बताते है क्या है, देवीना जो मनुष्य है उनको इन्विटेशन है, कर्मी लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन को स्वीकार नहीं करते, उसका उसको उनको फर्क नहीं, उनको लगता है कि बस हमारे क्या काम है, बस कर्म करते रहेंगे और फल का भोग करेंगे, लेकिन भक्त क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। देखिए अंतर कैसे होता है, जो कर्मी क्या करते हैं केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं, और कभी कुछ मिलता है और कभी मिलता नहीं है, कभी थोड़ी सी खुशी का अनुभव होता है कभी कभी वो भी नहीं, दुखी रहते हर समय, लेकिन भक्त क्या करते हैं अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं करते, किसको तुष्ट करने के लिए, भगवान को। ऐसे भागवत में श्लोक था ना पहले स्कंद में, कौन सा श्लोक है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति, मतलब जो परम धर्म क्या है, भक्त क्या करते हैं परम धर्म को अपनाते हैं, परम धर्म क्या है, जो भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान को प्रसन्न करने का फल क्या मिलता है, जो भगवान को प्रसन्न करता है स्वयं प्रसन्न हो जाता है। कर्मी लोगों को ये डेफिनेशन पता नहीं है भक्तों की, कर्मी लोग सोचते हैं भक्त कैसे, हर समय कैसे झूमते नाचते हैं, इतना आराम से आनंद मचाते हैं, आनंद से रहते हैं, ऐसे लगता है उनको पता नहीं कि हम इतना दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे चेहरा कैसे रहता है, मुरझाया हो रहता है। और भक्तों का वो नाच रहे गा रहे बस राजभोग भी खा रहे और क्या रहता है उनका चेहरा हर समय खिला हुआ रहता है, ऐसे कैसे होता है उनको पता नहीं है। क्यों पता नहीं उनको, उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि भक्त लोग हर समय भगवान को समर्पित रहते हैं, ये उनको मतलब ये बात पता नहीं उनको। और देखिए भक्त लोग आश्रम में रहते, आश्रम मतलब आश्रम, आ मतलब बुलाना नहीं, आ मतलब आ नहीं, आश्रम मतलब जहां पे भौतिक श्रम नहीं होता है, केवल भगवान की भक्ति होती है, इसलिए आश्रम कहा जाता है। और कर्मी लोग आश्रम में नहीं रह सकते, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, आश्रम है, आश्रम मतलब जहां पर जय श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बद सुभद्रा महारानी श्री प्रभुपाद की जय। भक्त लोग आश्रम में रहते मतलब आश्रम जहां पे भौतिक श्रम नहीं होते, केवल जहां पर क्या होता है भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म किया जाता है। और उसका फल जो कर्मी लोग अपेक्षा करते मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन भक्त लोग क्या चाहते, भक्त लोग भगवान से मिलते हैं, क्या प्रार्थना करते भगवान से, क्या लंबा लिस्ट लेके जाते कि ये पिछले बार ये मैंने मांगा था ओके ठीक, नेक्स्ट हाँ रेफ्रिजरेटर कहाँ मिला, नहीं मिला, कोलगेट का रेफ्रिजरेटर नहीं मिला मुझे, कोलगेट का नहीं होता है सॉरी, अच्छा जो कुछ है उसका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं मैं, लगता है ये नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन भक्त लोग क्या करते, भक्त लोग केवल कहते कि मुझे कौन चाहिए, हे भगवान मुझे आपकी सेवा चाहिए। एक बार हाँ इस गृह जीता मित्र प्रभु आए थे नोएडा में, वो प्रवचन कर रहे थे, पूछ रहे सभी को आप क्या चाहते हो, भगवान से क्या मांगोगे आप, तो किसी ने कहा हम चाहेंगे कि हे भगवान मुझे गोलोक वृंदावन में भेज दीजिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, भक्त क्या चाहते है मुझे आपकी बस सेवा में रखिए, अगर सेवा में रहना है तो फिर गोलोक वृंदावन में जाने के बाद क्या करेंगे, सेवा ही करेंगे, अगर भक्त को नरक में भेजा जाए तो सेवा ही करेगा, भक्त लोग हर समय सेवा ही करेगा। और कर्मी लोग हर समय अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेंगे और फल की अपेक्षा करेंगे, कुछ कभी थोड़ा मिलेगा कभी ज्यादा मिलेगा और कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, ज्यादा तो कम ही मिलता है उनको, क्योंकि इतना कहते ना हमने इतना धन कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, लेकिन कमाया मतलब कम ही आया है ना, ज्यादा ही नहीं होता है, कमाया क्यों बोलते कम ही आया, ज्यादा आता नहीं हो। और कितना मिलने के बाद वो रोते रहते, इतना इतना किया लेकिन क्या मिला मुझे, थोड़ा ही मिला, हर समय रोते रहते हैं, लेकिन भक्त क्या रहते हैं हर समय हंसते हैं नाचते हैं गाते हैं। एक बार एक व्यक्ति के पास गए हम, उन्होंने कहा हम इतना दिन रात मेहनत करते फिर भी हम रोते रहते, लेकिन आप तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते फिर भी आप हंसते हुए, वो कैसे। हमने कहा एक बार मंदिर में आके देखो पता लगेगा क्यों हंसते भक्त लोग। और जैसे भक्तों को क्या प्राप्त होता है, ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम, ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस संस्था शुरुआत हुई तब क्या था, केवल उनके पास कितना धन था, केवल 40 रुपए थे, और 40 रुपए का 8-10 साल में कितना हो गए, प्रभुपाद तब की बात कर रहे हैं, अभी कितना हो गया होगा अभी गिन भी नहीं सकते हम, इतना अनगिनत धन मिल गया। लेकिन भक्त क्या करते, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये धन इतना मिलने के बाद प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि मेरे पास 40 रुपए थे अब मैं 40 करोड़ का मैं मालिक बन गया हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे नहीं कहा प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कहा धन किसका है, ये आपका है, कृष्ण आपका धन है। जब जुहू में राधा राजबेरी का मंदिर नहीं था, छोटी सी कुटिया में राधा राजबेरी रहते थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा राजबेरी मैं आपके लिए बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे लिए महल बनाऊंगा। कर्मी लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी वहां जाके कोई प्रणाम करता है, और मंदिर छोटा भी हो तो भी प्रणाम करते, वहां अंतर है ना, क्योंकि वहां भगवान रहते, यहां पे मतलब जो मंदिर है उसमें भगवान रहते, मंदिर छोटा है तो भी भगवान छोटे नहीं, भगवान बड़े हर समय, और घर कितना भी बड़ा हो लेकिन व्यक्ति छोटा होता, क्यों, कब बड़ा बनता है व्यक्ति, जब भगवान के सामने झुकता है तब। और यहां पे एक बात हम विशेष रूप से गौर कर सकते हैं, कौन सी बात, कि भगवान के भक्तों का भगवान पर विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे हित के लिए है। और जो कर्मी लोग क्या करते हैं, कुछ होगा तो सोचते कि ये ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया ऐसे, मैंने ये किया था वो किया था, हर समय वो लोग क्या करते हैं, निराशा में रहते हैं। जब सुदामा विप्र सुदामा ब्राह्मण उनकी पत्नी कहते थे कि आपके मित्र तो इतने धनी है आप चाहिए ना मांगे कुछ तो उनसे, लेकिन सुदामा मांगना नहीं चाहते थे कुछ भी। सुदामा ने कहा नहीं कैसे मांगो मैं, देखिए घर में तो सभी हमें खाने के लिए नहीं कुछ नहीं और आप मतलब कैसे गुजारा कैसे होगा हमारा, तो आप चाहिए मांगिए, मैंने सुना है कि कृष्ण क्या कर सकते हैं जो चाहे कुछ भी दे सकते हैं और विशेष से ब्राह्मणों को तो कुछ भी दे सकते हैं वो, आप जाइए। सुदामा नहीं चाहते थे कि मैं भगवान से कुछ मांगू क्योंकि वो समझते थे कि मैं जिस स्थिति में हूं मैं तो खुश हूं, मुझे मांगने की जरूरत ही क्या है, मैं तो प्रसन्न हूं। फिर भी पत्नी ने बहुत जिद की इसलिए पहुंचे जा रहे थे और जब जा रहे थे इतनी कड़ी धूप थी ऐसे जा रहे थे, हाँ पैर में कुछ चप्पल नहीं था कुछ नहीं था कपड़े फटे हुए थे जा रहे थे, तो भगवान को दया आई क्योंकि भगवान हर समय भक्तों के साथ रहते, भगवान को दया, भगवान ने क्या कि तुरंत जैसे ही सुदामा ऐसे बहुत मतलब चक्कर आ रही थी उनको, तो भगवान ने तुरंत उनको उठाया और कहां रख दिया, उठा के द्वारका में रख दिया, द्वारका में पहुंचा दिया और आके खुली देखा द्वारका में आ गए हमें और सबसे पूछने लगे कि कृष्ण कहां रहते यहां, तो सबने पूछा अरे कृष्ण, अरे कृष्ण आपने आपको क्या दोस्त समझ रहे कृष्ण का, कृष्ण बोल रहे अरे श्री कृष्ण तो कहो कम से कम। तब सुन लिया भगवान ने सुन लिया कि कौन आ गया, सुदामा आ गया है, तो वहीं से भगवान उठ के अपने पैरों में जूते भी नहीं पहने, तब द्वारका में तो जूते पहनते हैं ऐसे अलग स्टाइल के होते वहां, और क्या क्या भगवान ने तुरंत अपने सिंहासन से उठ के खड़े होकर क्या कहा, सुदामा ऐसे पुकारने लगे और सुदामा के लिए, और सुदामा ने सुन लिया कि कौन पुकार रहे मुझे, मेरे कृष्ण पुकार रहे, और उन्होंने भी कृष्ण, वहां से सुदामा ऐसे आके एक दूसरे का आलिंगन किया, सभी देखने लगे अरे क्या हो रहा है। सुदामा को अपने महल में लेके गए, अपने आसन में बिठाया और उनके चरणों को धोने के लिए देखा, रुक्मिणी ने सब आरती ट्रे तैयार किया था लेकिन उसमें क्या नहीं था, पानी का ये तो था ग्लास था, इसमें तो पानी है लेकिन उसमें पानी भी नहीं था, और जब था उसमें पानी नहीं था तो रुक्मिणी ने कहा कि अरे पानी मैं भूल के लेके आती हूँ, पानी लाने के लिए अंदर गई महल के अंदर और देखा, बाहर जब आ गई देखा तो भगवान क्या कर रहे हैं, सुदामा के चरणों को धो रहे, पानी भी आ रहे वहां, उनको आश्चर्य पानी मैं अभी पानी तो ये अभी लेके आ रहे हूं और ये कैसे धो रहा है, तो देखा उनकी मुख की ओर, कृष्ण के मुख की ओर जब देखा तो कृष्ण अपने आंखों से जो आंसू बह रहे थे अपने आंसुओं से क्या कर रहे, सुदामा के चरणों को धो रहे, हालांकि सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं, हाँ कुछ पैसा नहीं धन नहीं कपड़े भी नहीं फटे हुए, हाँ कुछ तंदूर लेके आए पड़ोसी से मांग के उधार लेके आए, कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ है उनके पास। कर्मी लोग इस बात को नहीं समझ सकते, भक्त के पास जब कुछ भी नहीं होता तो भी उसके साथ भगवान रहते हैं। जब कृष्ण ने कहा अर्जुन और दुर्योधन से, अर्जुन से कहा कृष्ण ने कि अर्जुन मैं तो युद्ध में स्वयं हिस्सा नहीं लेने वाला हूं, तुम्हें जो चाहे मांग सकते, एक तो मेरी सेना और मैं दोनों में से किसी का चयन करो, तो क्या किया अर्जुन ने, कृष्ण का चयन किया, कृष्ण को चुना और दुर्योधन सेना लेके खुशी से चला गया। दुर्योधन के चले जाने के बाद कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन मूर्ख हो तुम्हें पता नहीं, अरे मैं तो युद्ध करने वाला नहीं हूं और मेरी सेना युद्ध करेगी और अर्जुन दुर्योधन का सेना लेके गए और तुमने मेरा चयन किया, तो मैं क्या कर सकता हूं युद्ध में, तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तो अर्जुन ने कहा कि आपकी सेना लेके मैं क्या करूंगा, बस आप हो तो बस, आपका साथ है तो फिर मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस आप हो तो बस सब कुछ मिल जाएगा मुझे। मतलब कि भक्त का भगवान पर इतना विश्वास होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास सब कुछ होता है क्योंकि उसके पास कौन होता है, भगवान हर समय होते, विश्वास होता है भक्तों के जीवन में। तो सुदामा ने कुछ मांगा भी नहीं, कुछ चले गए वहां से, और चले जाने के बाद जब सुदामापुरी आ गई पास में, गुजरात में है सुदामापुरी, आप गए होंगे, आप गए सुदामापुरी, सुदामापुरी आप में से कौन कौन गए, द्वारका गए होंगे, द्वारका, द्वारका भी नहीं गए, ओहो कैसे होगा, द्वारका मतलब यहाँ एनसीआर का द्वारका नहीं, द्वारका धाम, द्वारका धाम में, अच्छा कुछ ही लोग गए, बाकी आप सबका क्या होगा, फिर नहीं जाएंगे, चार धाम जाने से पहले एक बार जाइए जरूर, जाने से पहले समझ गए बहुत जरूरी है वहां जाना, द्वारका में वहां जाते जाते ही सुदामापुरी आ जाती है, सुदामापुरी में जैसे प्रवेश किया देखा तो ये कहीं अन्य स्थान में तो नहीं आए, क्योंकि वहां क्या देख रहा, पूरी सुदामापुरी कैसे बन गई थी, सोने की नगरी बन गई थी, और देखा कि कोई स्त्री आ रही है हाथ में आरती लेके, आरती का ट्रे लेके आ रही और आरती करने के लिए प्रयास कर रही। देखा तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, कोई स्त्री आकर मेरी आरती उतार रही, कौन है ये? और पूछा कि कौन हो आप माता जी, आप कौन हो? इस कौन में तो हो जाता है ऐसे, जो प्रभु जी इतने विरक्त होते कि अपनी पत्नी को भी माता जी कहते हैं, इस कौन में ये सीख सकते हैं हम कि ये मेरी माता जी है। अरे माता जी मतलब माँ को माता जी कहते हैं, तो पत्नी को तो पत्नी या उनके नाम से पुकार सकते हैं, बहुत बार हो जाता है ऐसे गड़बड़। तो एक बार एक सन्यासी थे और उन्हें मिलने की मतलब एक कोई माता जी ने प्रणाम किया उनको, उन सन्यासी ने पूछा कि अच्छा आप कौन? उन्होंने कहा कि वो जो प्रभु जी है ना उनकी मैं माता जी हूं। अच्छा उनकी माता जी नहीं, आप तो पत्नी हो, माता जी कैसे आप? ये थोड़ा सा ज्यादा वैराग्यानी से ऐसे हो सकता है, ये वैराग्य नहीं वास्तव में, थोड़ा गलत फहमी हो जाती कभी। तो हुआ ऐसे, तो पूछा कि आप कौन हो, क्या पहचान ही नहीं आपने? मैं तो आपकी पत्नी हूं सुशीला। अच्छा आप मेरी पत्नी हो, लेकिन ऐसे ऐसे वस्त्र तो मैंने कभी आपको नहीं देते, लेकिन ये वस्त्र कहां से आ गए? इतनी सुंदर वस्त्र, लेकिन तब जानते हो क्या कहा सुशीला उसने? उनकी पत्नी ने कहा कि जब आप गए थे द्वारका में उस समय कृष्ण यहां पे आए थे और कृष्ण ने इस नगरी को पूरे सोने की नगरी बना दी, और घर में महल देखा पूरा सोने का था, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं समझा चलो अभी मेरी नगरी सोने की हो गई है, मैं अभी बहुत धनी बन गया, मुझे कोई जरूरत नहीं कृष्ण की, बस मैं जो चाहता था मिल गया। घर में ऐसा सोचते, लेकिन भक्त क्या सोचते हैं? ये सब कुछ किसका है? उनका ही था, उनका ही है। पहले भी मैं उनका था, आज भी मैं उनका हूं, और मेरे पास जो है वो सब उनका है, मेरा कुछ नहीं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तुम कुछ लोग कहने का तो कहते ऐसे, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा भगवान के सामने, हे भगवान जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। भगवान ने सुन ली उसके बाद, ऐसे भगवान हर एक की बात सुनते हैं, उसकी भी बात सुन ली भगवान ने। और रात में वो शायद बहुत बड़ा सेठ था, और घर में रात में घर में आने के बाद पूरा गिनने, जब तक गिनता नहीं ना आज जो मिला है तब तक क्या नहीं होता है, नींद नहीं आती। और फिर उसने गिनना शुरू किया, भगवान दरवाजे पे खड़े हो गए द्वार पे, और कहा कि आप क्या, आपने पहले थोड़ा मुझे इन्फॉर्म तो किया होता, आप ऐसे आ गए अचानक? नहीं, तुमने इतना हृदय से प्रार्थना की ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतने मैं सब लेने के लिए आया हूं। लेने के लिए आया ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये तो मेरा है, तू कहा क्यों ऐसे? वो तो सबके सामने मैंने इसे कह दिया कि तेरा तुझको अर्पण, सभी सुन रहे थे ना आसपास, मेरे जो चेले चपाटे थे वो सुन रहे थे, इसलिए मैंने इसे कह दिया। लेकिन वास्तव में मेरे बहुत आसक्ति इन चीजों में, लेकिन भक्त क्या सोचता है? उसको मिले ना मिले सब कुछ उनका ही है, हर चीज उनकी है, सारी भूमि गोपाल की। हालांकि हो सकता है मेरा घर, एक भक्त के घर में प्रसाद के लिए बोला है हमें, हमने कहा प्रसाद के लिए जाना, तो उसने नहीं कहा कि मेरे घर में आना, उसने कहा कि जो घर मुझे भगवान ने कुछ समय के लिए दिया है उस घर में आप आइए प्रसाद पाने के लिए। ये भाव होना चाहिए भक्तों का, हाँ मेरा घर है मेरे घर में आओ प्रसाद के लिए, अरे आपका कहाँ है? रूपा जी कहते हैं ना कि कोई कहता कि मैंने सब कुछ त्याग किया है, अरे त्याग क्या किया है, था ही क्या तुम्हारा त्याग करने के लिए, है ना? मैंने त्याग किया मतलब वो मेरा था ऐसे हो ही गया ना, मेरा था मैंने त्याग किया है। लेकिन भक्त क्या सोचता है? मेरा था ही नहीं त्याग करने के लिए, सब आपका ही था और आपको ही दे रहा हूं। तो मतलब जो सुदामा के चरित्र से समझ सकते कि भक्त क्या होता है, भगवान पर विश्वास। एक बार ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से पूछते थे, पूछा उन्होंने, श्रीवास तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और तुम दिन भर तो घर में रहते हो, भजन करते रहते हो, तुम्हारा कैसे दाना पानी, कैसे सब व्यवस्था कैसे होती है? तुम ऐसे बाहर बिजनेस या जॉब के लिए भी नहीं जाते हो? ये मॉडर्न वर्ल्ड से केवल कि काम के लिए नहीं जाते तुम, तो कैसे गुजारा कैसे चलता तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूं, काम के लिए नहीं जाता हूं। अच्छा नहीं जाते हो, तो फिर कैसे होता तुम्हारा? उन्होंने कहा कि जो कुछ लिखा हुआ है मेरा वो तो अपने आप आ जाता है, इसलिए मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। तब चैतन्य अपने कहा अगर ऐसा है तो तुम बिल्कुल बोले इतना भरोसा है तो फिर संन्यास क्यों नहीं लेते तुम? तो श्रीमान ने कहा नहीं नहीं संन्यास मेरे लिए संभव नहीं संन्यास लेना। तो चैतन्य ने कहा कि तुम संन्यास के लिए मना कर रहे हो, और कुछ कार्य करने के लिए भी मना कर रहे हो, तो कैसे होगा तुम्हारा? हाँ, क्या आसमान से आके टपकेगा सब कुछ? ऐसे महाप्रभु ऐसे पूछते हैं। तब क्या श्रीवास ठाकुर ने क्या किया? तीन बार ताली बजाई। बोले महाप्रभु जी ये क्या है, तीन बार ताली का अर्थ क्या है इसका? तो अर्थ यह है कि अगर तीन बार उपवास करने के बाद भी अगर मुझे कुछ अन्न नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा, गले में बहुत बड़ा पत्थर बांध के गंगा जी में कूद के मर जाऊंगा। चैतन्य ने कहा बस श्रीवास क्या कह रहे तुम, एक समय क्या हो सकता है, लक्ष्मी जी को भी हाथ में कटोरी लेके घूमना पड़ेगा भिक्षा के लिए, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे कभी नहीं होगा। तुम बस मेरा भजन करते रहो और तुम्हें जो कुछ जरूरत है उस सबकी पूर्ति मैं स्वयं करूंगा। और वास्तव में ऐसे होता था, श्रीवास घर में पता नहीं लगता था कैसे घर में आ रहा है, अपने आप डिब्बे सब भर जाते थे, अपने आप सब होता था। मतलब भक्तों की जीवन में भक्त क्या हर समय, और तब महाप्रभु कहते हैं तुम याद नहीं वो श्लोक गीता में मैंने कहा था, कौन सा श्लोक? 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन स्मरण करते हैं उनके जीवन में जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? भक्त ये कहते मुझे ये चाहिए वो दाना चाहिए, नहीं, भक्त क्या करते हैं, मेरे भक्ति का पोषण कीजिए, मुझे जो आपकी भक्ति प्राप्त हुई है उस भक्ति का पोषण कीजिए। ऐसे इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते ना, नामाश्रय करी जतिन तुम्हें थाक अपन काजे। मतलब नाम का आश्रय जो मिला है मुझे उसको क्या कीजिए, हे भगवान आप मुझे उसकी रक्षा। धन दौलत तो आज है और कल नहीं है, लेकिन जो भक्ति है उसका पोषण करना जरूरी है। भगवान से ये मांग रहे, भगवान आपके प्रति मेरी अनन्य भक्ति हर समय बनी रहे, ये भक्त की मांग होती है। इसलिए जो जो भक्त नहीं है उसका विश्वास नहीं होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, उसको हर समय लगता है क्या होगा मेरा, क्या होगा, हर समय भयभीत रहता है। यहां तक कि जो असुर है उनको यह भी भय रहता है, ऐसे कंस था ना, कंस भयभीत रहता था, कंस भी चिंतन करता था कृष्ण का, किस भाव में चिंतन करता था, कंस सोचता था कि कृष्ण आएंगे तो क्या होगा मेरा, हर समय भयभीत रहता था, कृष्ण से डरता था। लेकिन भक्त क्या करते हैं, कृष्ण से डरते नहीं है, कृष्ण आते हैं इसलिए कृष्ण अगर नरसिंह रूप में आते तो भी प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकश्यप डर गए, ये कौन आ गए, देखते रहेगा, अरे मैंने तो ऐसे कुछ, मैंने तो वरदान मांगा था कि मेरा दिन में मृत्यु नहीं, रात में नहीं होनी। तो भगवान ने उसको अपने गोद में रखा और फाड़ने से पहले क्या किया, उसको कहा देखो दिन भी नहीं और रात भी नहीं। उसने कहा अब बात सही है, घर में भी नहीं बाहर नहीं, बात सही है, ये भी सही है। प्रभा जी एक प्रवचन में कहते हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, आपने सुना प्रवचन। तो उसको पहला ऑपरेशन दुनिया का, सबसे पहला ऑपरेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल लेकिन पेशेंट डेड। ऐसा ऑपरेशन कोई डॉक्टर तो ऐसा मत करना, वो सक्सेसफुल नहीं माना जाए। तब देखिए भगवान ने जो भगवान में श्रद्धा है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहने सर्व कर्म कृत है। जो भगवान का भक्त है उसको पता है कि भगवान की भक्ति करने से ही मेरे जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो कर्मी हो क्या कहेंगे, हाँ भक्ति करेंगे लेकिन कितना, सुबह थोड़ा शाम को थोड़ा, हाँ बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, इतना पता है उनको। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। अभी प्रभुपाद जी इसलिए उदाहरण दे रहे ना, 40 रुपए थे मेरे पास, अभी 40 करोड़ बन गए, क्यों? श्रद्धा विश्वास, भगवान पर विश्वास है। हाँ मेरे पास जो है 40 रुपए वो भी भगवान के ही, अभी 40 करोड़ मिल गए वो भी होने के भगवान के। इसलिए हमें जो भक्त है वो भोग करना नहीं चाहता है, भक्त क्या करता है भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है वो भक्त है, और जो कर्मी हो क्या करता है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। ये अंतर है कर्मी और भक्तों के बीच का। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में अलग अलग भक्तों को कुछ वरदान दे रहे थे, कुछ भक्त, एक भक्त ने मांगा कि महाप्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसके द्वारा मैं क्या कर सकूं, अपने गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा हर समय बनी रहे, बहुत दृढ़ रहे मेरी श्रद्धा गुरु के प्रति। और प्रभुपाद जी के जीवन में हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी जब वो श्लोक पढ़ा प्रभुपाद जी ने, श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का जो उसपे टीका थी, कौन सा श्लोक पढ़ा था उन्होंने? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह गुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। उसका अर्थ है, प्रभुपाद देख रहे थे कि व्यवसायात्मक बुद्धि मतलब कौन सी बुद्धि है। तब उन्होंने श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका समझ गए कि ये व्यवसायात्मक बुद्धि मतलब क्या है, गुरु के आदेश का पालन करना, यही व्यवसायात्मक बुद्धि है। जो गुरु के आदेश का पालन करता है उसको उसको उससे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, और जब गुरु प्रसन्न होते तो भगवान प्रसन्न होते। इसलिए गुरु में दृढ़ श्रद्धा प्राप्त हो, ये भगवान से अगर मांगते हैं हम, और गुरु में हमारी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है तो फिर भगवान में भी निश्चित रूप से दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं। मैंने एक बार हमारे गुरु महाराज से, मेरे गुरु महाराज से पूछा कि आप जो सेवा दे रहे हो, सेवा किस भाव में मुझे करनी चाहिए। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि आप जब गुरु जब आदेश देते शिष्य को कुछ करने के लिए, तो आदेश के साथ क्या देते हैं, वो शक्ति भी देते हैं। और एक कहा उन्होंने मुझे कि जब भी भगवान के सामने तुम खड़े हो जाओगे, भगवान से प्रार्थना करना कि गुरुजी ने मुझे जो आदेश दिया है उस आदेश की पूर्ति के लिए आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। सेवा योग्यम गुरु, मुझे सेवा योग्य हे भगवान, हे राधा राधे रमण जी, मुझे सेवा योग्य बनाइए, मुझे आपका सेवक बनाइए। जब राजा प्रताप से चैतन्यभ ने पूछा, चैतन्यभ के चरण की सेवा करने लगे जब राजा प्रताप रुद्र, तो चैतन्यभ ने मुझसे पूछा कि कौन हो तुम, क्या तुम्हारी पहचान क्या है तुम्हारी। तब उन्होंने कहा, ये नहीं कहा उन्होंने मैं बहुत बड़ा राजा हूं, ये नहीं कहा उन्होंने, कहा राजा कहे आमी तुम्हारा दास, मैं आपका दास हूं। लेकिन इतना कहने के बाद संतुष्टि नहीं मिली उनको, और बाद में क्या कहा, राजा कहे आमी तुम्हारा दास भृत्यर भृत्य कर यही मोर अभिलाष, मैं आपका दास हूं। नहीं 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 दास नहीं, मैं क्या हूं, मुझे आपके दासों का दास बनाइए, यही मेरी कामना है, यही मेरी अभिलाषा है। जैसे कल रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी भी बता रहे थे ना कि हम भक्तों के प्रति कैसे होना चाहिए, उनके प्रति बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जिससे उनके अंदर दोष हम ना देखें, हर समय उनका उनके गुण ही देखना चाहिए। जो भक्त होते हैं क्या करते हैं, भगवान के प्रति इतने समर्पित होते हैं, भगवान के प्रति कैसे समर्पित हो सकते हैं वो, क्योंकि वो भक्तों के प्रति समर्पित होते हैं, क्योंकि पहला समर्पण गुरु और भक्तों के प्रति होता है, और उसी से निश्चित होता है कि हम जितना भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, भक्तों के प्रति और गुरु के प्रति, उतना समर्पण हमारा भगवान के प्रति हो जाता है। इसलिए हम सुबह सुबह हर रोज गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतपि ध्यायम स्तु मंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री शरणारविंदम। यह बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर रोज गुरु वंदना का अर्थ, यहाँ कुछ भक्तों का तो कंठस्थ हो गया अर्थ, इतनी विशेष बात है। गुरु के प्रति जो समर्पण है वो समर्पण हमें भगवान तक लेके जाता है, और गुरु के प्रति जो समर्पण नहीं है जिसका वो उसका समर्पण भगवान के प्रति भी कभी नहीं हो सकता, ये हमें समझना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में कर्मियों के बारे में भी कहा है और भक्तों के बारे दोनों के बारे में कहा है, लेकिन भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं कर्मी से बहुत बड़ा श्रेष्ठ हो गया हूं। देखिए ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कर्मी से भी भक्त श्रेष्ठ है, इसलिए अब मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त बन गया हूं, पंजाय बा का सबसे पंजाय बा का उदाहरण दे रहा हूं इसे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूं। ऐसे अगर सोचेंगे तो क्या होगा, हम कर्मियों की निंदा करते रहेंगे, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानेंगे तो क्या हो सकता है, कभी भी नीचे आ सकते हैं। या जो भक्त है वो कर्मी, ऐसे कोई करोड़पति क्या बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। इसलिए कभी भक्त भी वो अगर दूसरों की निंदा में निंदा करने में रुचि रख रहा है, ना में रुचि नहीं निंदा रुचि, ऐसे अगर उसका भाव बन गया तो क्या हो जाएगा, फिर वो भगवान को या गुरु को भक्तों को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्त ये सोचते हैं कि अन्य भक्तों से मैं क्या हूं, निम्न हूं, और अन्य भक्त मुझसे कई गुना श्रेष्ठ। एक बार श्रीमान कृष्णानंद प्रभु जी अपने प्रवचन में बता रहे थे कि भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अभी सीनियर हो गया, ये सोचना चाहिए कि मैं तो नया भक्त हूँ। इस बार नया भक्त क्या सोचता है, हर समय सबको रिस्पेक्ट देता है, नया भक्त हर को हरे को प्रणाम करता है, उनमें कभी दोष देखता नहीं, हरे को प्रणाम करता है। इसका अर्थ नहीं नया भक्त मतलब हर समय नए भक्त के समान रह के केवल प्रणाम ही करते रहे, लेकिन उसके साथ क्या करना चाहिए, भक्तों के आदेश का पालन करना चाहिए, और भक्तों का आदेश ही क्या है हमारे लिए, अथॉरिटी को फॉलो करना मतलब गुरु को फॉलो करना। कुछ भक्त कहते हैं कि हम गुरु को फॉलो करेंगे, अथॉरिटी को नहीं करेंगे। लेकिन अथॉरिटी को किसने नियुक्त किया है? गुरु ने नियुक्त किया है। तो अथॉरिटी को फॉलो करेंगे तो फिर गुरु को फॉलो कर रहे हैं, और गुरु को फॉलो कर रहे हैं मतलब भगवान को फॉलो कर रहे हैं। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माध्याना व्रतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण का अनुशीलन तभी कर पाएंगे हम, और भक्ति वो उत्तम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। तो इससे हम यही सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? या कुछ और कुछ बता सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे भक्त बैठे हैं, और कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? कुछ ठीक है, यही पे रुकते हैं हम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय। भाई गौतम आनंदे श्री प्रभुपाद।